नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के मसौदे पर विचार किया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत और कला को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 के मसौदे पर विचार किया गया। इसका उद्देश्य राजधानी को देश में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने की दिशा में व्यापक सुधार लागू करना है। इसके माध्यम से कारोबार शुरू करने और संचालित करने से जुड़ी मौजूदा जटिल प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा प्रशासन स्थापित करना है जहां उद्यमियों और निवेशकों का समय सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने में नहीं बल्कि अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा भवन निर्माण स्वीकृति, फैक्ट्री लाइसेंस, फायर क्लियरेंस, पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन सहित अनेक सेवाएं इसी पोर्टल के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जोखिम वाली गतिविधियों के लिए स्वयं प्रमाणन की व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा, भवन योजना स्वीकृति, प्रदूषण संबंधी अनुमति तथा लो टेंशन बिजली कनेक्शन जैसी प्रक्रियाएं स्वयं घोषणा के आधार पर पूरी की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इससे छोटे, कम जोखिम वाले और कम खतरे वाले उद्यम बिना अनावश्यक देरी के अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जिन उद्यमियों का पहले से जीएसटी, एफएसएसएआई, एमएसएमईडी अधिनियम और लेबर कोड्स के तहत पंजीकरण है, उन्हें अलग से ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस तथा दुकान और संस्थान के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे एक ही उद्देश्य के लिए कई प्रकार के लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त होगी और कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी आवेदक से वह दस्तावेज या जानकारी दोबारा नहीं मांगेगी जो पहले से दिल्ली सरकार के किसी विभाग के पास उपलब्ध है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है जिसमें मंजूरियां आसान हो, प्रक्रियाएं स्पष्ट हो, निर्णय तय समय सीमा के भीतर लिए जाएं और अनावश्यक अनुपालन की बाधाएं समाप्त हो। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, संपत्ति नियमितीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध समाधान और प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पेंशन से संबंधित शिकायतों की जांच कर पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने को भी कहा। इस अवसर पर महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। श्रीमती गुप्ता ने महिलाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत, कला और अभिकल्पना परंपराओं को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहले से सफल तरीकों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्लीवासियों, कलाकारों और युवाओं के लिए ऐसे समावेशी मंच तैयार किए जाएं जो राजधानी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने में अपना योगदान दें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मॉनसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की दो रिपोर्ट तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित एक रिपोर्ट अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। इसके अंतर्गत रामजस कॉलेज के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 6 सप्ताह का समर इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्री सूद ने कहा कि अगली पीढ़ी को तैयार करने और भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसे मंचों को बढ़ावा देना जरूरी है। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कैंप कार्यालय में रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान, नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। श्री सिंह ने कहा कि राजधानी की डबल इंजन सरकार जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों के साथ साथ एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर्स की तैनाती को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने कहा कि बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंदर इंद्राज सिंह ने बवाना में दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम द्वारा बनाए गए लाल फ्लैट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बात की और वहां की समस्याओं की जानकारी भी ली। दोनों नेताओं ने समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल में डफरिन ब्रिज तथा पुल मिठाई के नीचे स्थित ओवरहेड उपकरण के डेड जोन में विद्युत लोकोमोटिव के रुक जाने की लंबे समय से जारी परिचालन संबंधी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। एक रिपोर्ट।
रेलवे ने बताया कि कई वर्षों से ये दोनों स्थान विशेष परिचालन चुनौती बने हुए थे। पुलों के नीचे सीमित हेडरूम के कारण इन स्थानों पर 50 मीटर से अधिक लंबे OHE डेड जोन बनाए गए थे। इन डेड जोन से गुजरते समय कई बार विद्युत लोकोमोटिव की विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती थी, जिससे वे बीच में ही रुक जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेनों के संचालन में विलम्ब होता था और इन व्यस्त रेल मार्गों पर परिचालन प्रभावित होता था। उत्तर रेलवे ने कहा कि इस उपलब्धि से रेल परिचालन की विश्वसनीय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर 22 अगस्त तक राखी डाक से भेजने के लिए विशेष व्यवस्था की है। संचार मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली के 34 प्रमुख डाकघरों के साथ साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राखी डाक के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। डाक विभाग ने लोगों से राखी और अन्य जरूरी सामान समय पर तथा सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं का उपयोग करने की भी अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नागरिक अपनी यात्रा के दौरान तय 15 दिन की समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके थे। विदेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, 11 डबल एंट्री वीजा और 14 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी 11 लोगों को हिरासत केंद्र में भेजा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 से पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एक अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग तथा समन्वय को मजबूत करना और स्वतंत्रता दिवस समारोह को बिना किसी घटना के संपन्न कराने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने की। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक भयावह योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल जिन दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, उन्होंने जांच के दौरान यह खुलासा किया कि वे दिल्ली में प्रदर्शन स्थल पर पेट्रोल बम से हमला करने के इरादे से आए थे। हालांकि वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सवेरे एक हादसे में हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक अलीगढ़ के रहने वाले थे। उनकी दुपहिया वाहन में किसी तेज गति के वाहन ने टक्कर मार दी थी और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है। मामले की जांच जारी है। शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह और अस्मिता डी से मुलाकात की। दोनों खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। श्री सूद ने कहा कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी और डिजिटली जोड़तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को भी कहा है। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान कल 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के मसौदे पर विचार किया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत और कला को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।